सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवलनाणुजोय छद्दवमणिज्यं पवाईः नमी ऊणजिणं भणिमो दौवणियोगं गणियसारम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता है भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी और यह उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब हमारा जो पहले सूत्र की ही अभी टीका चल रही है, मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं तो अनंत है, ऐसा कहने पर अनंत के हमने भेद देखे थे और अभी गणित संबंधी कुछ सूत्र कुछ फॉर्मूले हमें वहाँ बता रहे हैं। तो हम अभी 46 पृष्ठ पर आए हैं, उसके पहले हम जो 47 पर आए, हाँ वो 25-26 देखा था हमने, अभी उसको फिर दोबारा देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ अच्छा, 27 वाला भी मैंने बता, मैं 24 वाले डेट देख रही थी, बराबर है आज ये 25 के 47 पृष्ठ पर नीचे आ गए हैं। उसके पहले हम कल और परसों क्या क्या देखा था उसको फिर जरा रिवीजन करते हैं। गणित है ना, तो थोड़ा समझ समझ कर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ अलग अलग हमें भागाकार संबंधी कुछ नियम बता रहे हैं। तो भागाकार में उन्होंने पहले बताया किसी भी संख्या का वर्ग हो उसको उसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, यानी क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क, तो क आता है। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने भागहार में संख्याएं मिलाना शुरू कर दिया। तो भागहार में जो हमने क देखा था, भागहार यानी भाजक, तो क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क प्लस, अभी क का आधा लिया तो उत्तर कैसा क्या आएगा। तो उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा बताया कि उत्तर ऐसा आएगा क माइनस क डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 होगा ना, 3 होगा। अब हम इसको निकाल के देखते हैं,
माइनस साइन का वैल्यू कितने दे रहे
हो, हाँ
माइनस साइन का वैल्यू कितने,
देखो अभी हम देखते हैं माइनस क्यों किया वो हम अभी देखेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं या उसमें आप कोई भी संख्या डाल के देखेंगे। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 का आधा 1, यानी संख्या कितनी आ गई, 4/3 आ गई। और हमें अभी क्या 4/3 यानी कितनी होगी, 0. उल्टा हुआ, दो का आधा एक होता है ना,
दो को हमने दो गिना ना,
दो का आधा एक ही होता है।
बराबर है, चार तृतीयांश, चार तृतीयांश का अर्थ होता है 1/3। अब इसमें हमारा उत्तर क्या आया, अपने फॉर्मूले के अनुसार, दो माइनस दो तृतीयांश यानी एक प्लस एक तृतीयांश, यही है ना उत्तर? ये उन्होंने फॉर्मूला डायरेक्ट बताया। अब ये फॉर्मूला कैसा होता है, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये ऊपर क इंटू क है, देखो ये क इंटू क है, और नीचे क प्लस क बाय टू, क प्लस क बाय टू कितने होते हैं, तीन द्वितीयांश क होते हैं, तो ये तीन द्वितीयांश क आ गए बराबर, और ऊपर क स्क्वायर है, तो क स्क्वायर और ये क का हम कैंसिल करेंगे तो एक क ऊपर आएगा और नीचे तीन द्वितीयांश आ गए, तीन द्वितीयांश से डिवाइड करना है यानी दो तृतीयांश से गुणा करना है, यानी इसका फाइनल उत्तर क्या है, दो तृतीयांश क। अब हम क माइनस की भाषा में अगर लिखना है, दो तृतीयांश क यानी क्या, एक पूरे क में से एक तृतीयांश घटा देना, एक तृतीयांश कम, अब इसको ऐसा लिखेंगे हम क माइनस क तृतीयांश, हमें उत्तर डायरेक्ट आता है। कोई भी बड़ी संख्या का भी हमको अगर इस तरह से भागार करना है तो हम कर सकते हैं। अभी मुझे बताओ, एक्चुअली हर एक के पास कोई रफ पेज है कि नहीं है, तो हम गणित भी सॉल्व करेंगे। हाँ? देखो 64 है ऊपर और नीचे, 64 किसका वर्ग है, 8 का है, 8 में उसका आधा मिला दो, 4, नीचे 12 आ गए, 8 प्लस 4। अभी ऐसा गणित किसी ने दिया तो हमको डायरेक्ट निकालना है, तो क्या कहते हैं, हम सोचेंगे ये वर्ग है ऊपर का, 64 वर्ग है, तो उसको हम 12 को अलग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 8 प्लस 8 का आधा, बराबर है ना, इस तरह से लिखेंगे। हमको अभी डायरेक्ट उत्तर कैसा निकालना है, फॉर्मूला है अपने पास, तो उसको वो हम जैसे हमने क माइनस क तृतीयांश किया था वैसे 8 माइनस 8 तृतीयांश करना, ये डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। और अभी हम सॉल्व करके भी देखेंगे उतना आता है कि नहीं आता, 8 में से 8 तृतीयांश घटा देना यानी दो तृतीयांश 8 को रखना है ना, दो तृतीयांश 8 को रखना है यानी 1/3 निकाल देना, तो 2/3 रहेगा, 2/3 8 का अर्थ क्या होता है, 16 तृतीयांश, 8 का 2/3, 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना हुआ, 26, सॉरी, हाँ 24 2 26, मैंने 16 लिखा, 26 तृतीयांश। अभी हम डायरेक्ट यहाँ देखते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 12, घोटाला कर रही मैं, दो तृतीयांश 8 है ना, बराबर है, आठ पूर्णांक दो तृतीयांश। अभी डायरेक्ट हम उत्तर निकालेंगे तो ख्याल होगा कौन सा सच है। अभी यहाँ 8 और 8 का आधा 12, अभी आप करके देखो अपने अपने पुस्तक में, 64 डिवाइडेड बाय 12, 4 × 3 = 12 और यहाँ 16, ये कैसा आया हमारा, 8 माइनस क्या किया था हमने, 8 माइनस 8 का तीसरा भाग, 2/3 8, 8 का 2/3, हाँ वो 8 में से माइनस करने का रह गया था ना, 8 का 2/3 हमें कितना निकाला, 8 का 2/3 निकाला, परंतु 8 में से माइनस करने का रह गया था, 8 माइनस, सॉरी देखो देखो गोंदल गोंदल होते हैं, फिर से दोबारा 16 तृतीयांश से आना चाहिए,
8 माइनस 8 अलग 3 नहीं गुणा,
नहीं 8 8 माइनस 8 तृतीयांश, तो कितना आता है उसको हम डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ तीन करेंगे तो ऊपर यहाँ 24 आएंगे, 24 में से 8 गए 16 तृतीयांश, 26 तृतीयांश नहीं 16 तृतीयांश ही है, और ऐसे भी 16 तृतीयांश आता है, यानी हमें डायरेक्ट इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट तो 64 बाय डिवाइडेड बाय 12, 4 से भाग दिया, 12 को 4 से भाग दिया तो 3 आया, ये सॉल्व किया इसको हमने ऑर्डिनरी मेथड अपनी, 12 8 प्लस 4 8 प्लस 8 का आधा, हाँ तो सूत्र में डायरेक्ट हमको मालूम है उत्तर कितना निकलने वाला है, 8 माइनस 8 का थर्ड। कोई भी संख्या लेते हैं तो उसको इस तरह से हम ऊपर वर्ग हो और नीचे वो क प्लस में कुछ उसका हिस्सा उसमें मिला देते हैं, तो इसी मेथड से हम कर सकते हैं। तो ये 24 नंबर का हमारा सूत्र हुआ। अब यहाँ प्लस के बदले माइनस होगा, 8 माइनस 4 लेंगे यहाँ, तो यहाँ 8 माइनस हमने उसके 1/3 माइनस किया था, तो यहाँ 8 प्लस होगा, प्लस में क्या लेना, क डिवाइडेड बाय, हाँ 2 माइनस 1, यानी 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कितने होते हैं, 1 होते हैं, यानी कितने हो गए, 16 हो जाएगी। क इज बेस, देखो ऐसा हमारा सूत्र है, ऐसा सूत्र ऐसा है, क स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क प्लस क हाफ, क का दो दूसरा भाग है, क अभी प्लस है ना, तो क माइनस क का यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1 करना, अब यहाँ माइनस करो, अब क माइनस क का हाफ होगा तो आगे का कैसा उतर गया, क प्लस, अभी माइनस की जगह प्लस करो और नीचे 2 माइनस 1 हो जाएगा। अभी हमने जो 64 का उदाहरण देखा था, 64 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 देखे थे, अभी 64 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का आधा, ये 4, 4 से डिवाइड करना है। अभी उसका उत्तर डायरेक्ट कैसा होगा, 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी 1, यहाँ माइनस का प्लस किया और यहाँ प्लस का माइनस किया तो 8 प्लस 8 हो जाएगी, 16 आ जाएगी। अभी छोटी संख्या तो हमें पता है, बड़ी बड़ी संख्याओं में हमको पता नहीं चलता है ना, अब यहाँ न लेना है आपको, ये अपना जो सूत्र है क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क प्लस क डिवाइडेड बाय 9, तो उसका कैसा उत्तर आएगा, क प्लस, सॉरी प्लस नहीं, पहले माइनस लेना है, क माइनस क डिवाइडेड बाय अभी 9 प्लस 1। अब यहाँ अगर हम क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क माइनस क डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो उसका उत्तर क प्लस क डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, ये हो गया ना, ये 24 नंबर का सूत्र है। अभी 25-26 को भी हमने कल देखा था, नहीं ये तो 24 हो गया,
हाँ
कहाँ डायग्राम, हाँ वो तो वो हो गया था ना अपना क्षेत्र बताया उन्होंने, उसके 1/3 तीन हिस्से किए और वो राइट साइड में उनके मिला दिए, उसकी चर्चा हो गई थी अपने, हाँ ये ख्याल में आ गया। यही उन्होंने पेज नंबर यहाँ 45-46 पर बीजगणित से उदाहरण करके यहाँ लिखा है, बराबर, इसमें कुछ शंका है, पेज नंबर कितना, हाँ 45 में हाँ वो यही तो है। डायरेक्ट लिया पर पहले हमने उसको सॉल्व करके भी दिखाया था ना, ये यहाँ पर भी वो सॉल्व करके दिखाए उन्होंने, उसमें से आगे वाला कैसा निकाला इसे आपको चाहिए। हाँ वो ऐसा है ना, न बाय न प्लस वन है, मान लेते हैं हम न के लिए तीन लेते हैं तो तीन चतुर्थांश न हुआ, तीन चतुर्थांश क हुआ, क हुआ तीन चतुर्थांश क, उसका अर्थ क्या है, एक में से एक चतुर्थांश कम कर देना। वैसे ही ऊपर न और नीचे न प्लस वन है और उसमें मल्टीप्लिकेशन में क है, तीन के बदले न भी ला लो इसमें, तीन चतुर्थांश जैसे है ना वैसे न डिवाइडेड बाय न प्लस वन, तो ये क की भाषा में उसको क से मल्टीप्लिकेशन है, तो एक पूरे क में से कितना माइनस करना पड़ेगा, क डिवाइडेड बाय न प्लस वन। अभी नहीं समझ, अच्छा बाद में देख, कोई बात नहीं। आप इसको सिंपल कैसे करेंगे, तीन चतुर्थांश को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, अभी इसी को ऐसे लिख सकते हैं, चार क बाय फोर माइनस तीन क बाय फोर। हाँ दोनों के सेम है ना, दोनों को मिलकर ये चार है, तीन क डिवाइडेड बाय चार है, बराबर है ना। अभी इसको हम चार क में से तीन तीन का आना चाहिए फाइनल उत्तर, नहीं चार का में से तीन का नहीं एक का निकालना है, चार का में से एक का निकालना है और डिवाइडेड बाय चार है, तीन का डिवाइडेड बाय चार है ना। हाँ, अभी चार का माइनस क करो, बराबर है, उसी को वो बीच वाली स्टेप उसमें से वो कैसे आया उनको ये नहीं समझ। हाँ कौन से वाला, किस पेज की बात कर रहे हैं आप, 45 में। हाँ उसी को सिंप्लीफाई करके गए हुए, वही तो है ना। हाँ कर्ण प्लस क डिवाइडेड बाय न। हाँ, हाँ, वो निकल जाएगा। हाँ वो बीच की उनको समझ में आ गई, बीच का उनको समझा, उसके आगे वाली स्टेप बीच का तो हमने कल यहाँ भी देखा था। हाँ उसके आगे वाली जो स्टेप है वो उनके ख्याल में नहीं आ रहे। अभी जैसे तीन चतुर्थांश क है, तीन चतुर्थांश क नहीं एक पूरा क नहीं है, तो कितना कम है, एक चतुर्थांश कम है, तो क माइनस क चतुर्थांश हो गया। इस तरह से ऊपर न और नीचे न में एक प्लस है, डिनोमिनेटर बड़ा है उसमें। अभी हम आगे देखेंगे 25-26। 25-26 में क्या है कि जो जिसको भाग देना है वो संख्या सेम है। आपने कल के लाए कि दूसरी फिगर लेके, क्या आपने दृष्टांत पूछा ना और एक समझाओ कुछ फिगर करके, हमें ऐसे अलग अलग फिगर जैसे यहाँ 36 पर समझाया, हमें खुद अलग अलग संख्याएं लेकर इसको समझना चाहिए। सॉल्व करना चाहिए और उसको फॉर्मूले में डालते रहना। एक तो डायरेक्ट अंकगणित करके उत्तर निकालना और एक फॉर्मूला करके उसमें बैठता है कि नहीं देखना, तो ये वो पक्का होगा। खाली क्योंकि गणित है वो तो सुनने से समझ में आ ही नहीं सकता है, सॉल्व करने से ही होगा, है ना। तो अभी 25 और 26 में हमने क्या देखा है, तो जिसको भाग देना है वो भाज्य तो एक ही है, हाँ, और जो नीचे भागहार है भाजक जिसको कहते हैं वो अलग अलग है। जैसे हमने 36 में देखा है तो 36 में 9 से डिवाइड किया और 36 में 6 से डिवाइड किया, तो उसका जो लब्ध है वो अलग अलग आता है। पहला लब्ध होगा 4 और दूसरा लब्ध है 6। अभी यदि हमको अभी दोनों प्रकार से यहां समझाएं, भागहार को भागहार से भाग देने पर भी समझाया और लब्ध को लब्ध किसे भाग देकर भी समझाया। जैसे 9 डिवाइडेड बाय 6 करना है तो 9 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, अभी ये बात में बताएंगे 36 वाली बात। अभी 36 डिवाइडेड बाय, अभी 36 ये 6 प्लस 4 करना है क्योंकि लब्ध का हमको टोटल करनी है, तो 36 में 6 प्लस 4 करेंगे तो वही उत्तर हमको कैसे आएगा। तो ये जो भागहार है, भागहार को छिन्न भागहार, छिन्न भागहार यानी भागहार को भाग दूसरे भागहार से भाग देना, यानी 9/6 उसमें एक प्लस कर, पहले बार माइनस करना है कि प्लस करना है, प्लस ही करना था, हाँ, है ना, क्योंकि यहाँ हम लब्धों की टोटल कर रहे हैं, ये यहाँ जो संख्या आएगी वही यहाँ पर आ गई, 9/6 + 1 6 by 4 ये कल आपने लिखा था सब। तो 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9/6 प्लस 1। अब 36 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6 माइनस 1 9/6 यानी हमने कितना निकाला, 3/5। पहले 3/5 प्लस 1 किया था, बाद में 3/5 माइनस 1 किया, यानी वही रेशियो में वो आता है, ये संख्या हमें मिल गई थी। अब लब्ध में भी ऐसा ही हो सकता है। अभी लब्ध डिवाइडेड बाय लब्ध, 6/4 भी वही प्रोपोर्शन है ना, 3/2 का ही है, 6/4 में ले लो तो भी वही संख्या आने वाली, सेम प्रोपोर्शन में आता है। इस तरह से जैसे हमने 9 पर घटाया वैसे ही 6 पर भी घटा सकते हैं। तो इसमें भी हमने कल वो 36 का भी फिगर लेके देखा था, ख्याल है ना। तो यहाँ हम अपने बुद्धि से अलग अलग संख्याएं रखेंगे और उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये फॉर्मूले फिट अपने ख्याल में आ जाएंगे, ख्याल है। तो इसका अर्थ तो हम यहाँ समझेंगे और बाद में उसको हम फिट करके आप घर में दो दो चार चार बार अलग अलग संख्याएं लेकर उसको सॉल्व करके देखना चाहिए। उसके बिना तो गणित तो पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अब आगे, अब जो 27 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी उसका अर्थ भी देखा था, अब खाली अर्थ पढ़ते यहाँ कि दो लब्ध राशियों के अंतर से भागहार को गुणित करके। अब यहाँ लब्ध ये जो है ना राशि अलग अलग ली और भागहार सेम रखा, दो भिन्न भिन्न राशियां ली, जैसे हमने कल देखा था 105 लिया था और डिवाइडेड बाय 15 और 75 लिया उसको भी डिवाइडेड बाय 15, तो दो भिन्न भिन्न राशि परंतु वो भाजक भागहार सेम उसका। तो भिन्न राशि है तो उसका लब्ध भी अलग अलग आएगा, जैसे 105 को हम 15 से भाग देते हैं तो 7 आया था और 75 को 15 से भाग देते तो 5 आया। तो क्या करना, लब्धांतर निकालना, लब्ध में से लब्ध माइनस करके जो अंतर निकलेगा उसको लब्धांतर कहते हैं। तो वो लब्धांतर निकाला दो, दो से वो भाजक जो 15 है उसको गुणा करेंगे, 15 × 2 = 30 हो जाएगा। अब 30 प्लस वो छोटा वाला लब्ध उसमें मिला दे, लब्ध नहीं मूल राशि 75 प्लस 30 किए तो पहली जो राशि थी जिसको हमने भाग दिया था भाज्य राशि 105 वो निकल। ये तो आसान सूत्र है, वो तो हमने कल देखा था। अब आगे बढ़ेंगे 28 नंबर का, वहां लब्धांतर और उसकी बात चल रही, अब यहाँ हारांतर कहते हैं। हाँ, हार यानी भागार, दो भागारों का अंतर हारांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? हारांतर से अर्थात हार के एक खंड से हार को अपूर्त करके जो लब्ध आवे, हार का एक खंड जैसे हमारा भागाहार मान लेते हैं, किसी संख्या को हमने 12 से डिवाइड किया, कोई भी संख्या भी ले लो 60 है ऊपर और नीचे से 12 से डिवाइड किया, तो 12 के हमको खंड करने हैं, तो 4 और 3 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 4 × 3, तो 4 एक खंड है और 3 एक खंड है, 12 के 2 खंड किए, तो ये 4 और 3 में जो अंतर होगा एक आता है वो हारांतर कहेंगे। एक खंड और दूसरा खंड में जो अंतर है वो हारांतर कहेंगे। अब इसको पढ़ेंगे, क्या कहते हैं? हारांतर से अर्थात हार के एक खंड से हार को अपवृत करके, अपवृत करना यानी उसमें से माइनस करना, जो लब्ध आवे, यानी यहाँ अपने इस उदाहरण में 4 − 3 एक लब्ध आता है, उससे पूर्व लब्ध को गुणित करने पर, अभी पूर्व लब्ध है ना 12 × 5 = 60, यहाँ 5 था ना, पूर्व लब्ध को गुणित करने पर उत्पन्न हुई राशि का नए लब्ध का भागहार से भाजित भाज्य शेष ही अंतर है जो हानि और वृद्धि रूप होता है। ये भाज्य शेष ने ऐसी फिगर लिया है कि जो पूरा भाग नहीं जाता है और कुछ बाकी रहता है उसको कहते हैं भाज्य शेष। जैसे यहाँ 60 को तो 12 × 5 = 60 हो गया, परंतु यदि हम 67 लेते हैं तो 12 × 5 = 60 और कितना आएगा आगे, 7/12 है, 5 × 7/12 बराबर, ये भाज्य शेष हुआ, 7 हमारा भाज्य शेष रह गया। तब यहाँ क्या कहते हैं, आगे उदाहरण से हम समझेंगे पहले। 48 पृष्ठ पर अंकगणित पहले देखते हैं, वहां भज्यमान राशि को या भाज्य को की बात है, 263 है और उसका हार यानी भागहार है, भाजक है 72। 48 पृष्ठ पर देख रही हूं मैं बीच वाला अंकगणित, 263 को 72 से भाग देना है और 72 से हम उसको दो खंड करेंगे, उसमें एक हारांतर कौन सा है, हार कौन सा है, तो एक 9 है और दूसरा 8 है। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, 263 / 72 कितना आया, तो 3 का पूरा भाग गया और 47 शेष रह गए, तो 3 × 47 / 72 ये शेष रह गया, भाज्य शेष कहेंगे इसको, 47/72 को भाज्य शेष कहेंगे। हारांतर ने अन्य हार लिया उन्होंने, हाँ देखते हैं भैया, यानी अन्य जो उसका खंड है ना उसी को कहा उन्होंने, एक खंड और दूसरा खंड, अभी एक खंड 263/72 जो संख्या आई वो उसका कितना आता है, भाज्य शेष कितना आया, उसका लब्ध आया 3 जैसे भागाकार देते तो भागाकार कितना है, हम मराठी में कहते हैं भागाकार कितना है, तो तीन तो पूरा आया और बाकी कितना शेष रह गया, तो 47 बाकी रहे, तो हम उसको ऐसा लिखेंगे ना, 3 पूर्णांक 47 72 अंश, ये भाज्य शेष हुआ। अब उसको कहते हैं, अब ये जो भाज्य शेष रह गया है वो अलग तरीके से उनको लिखना है यहाँ, तो 263/9 लिया उन्होंने, 9 8 72, तो 72 के उन्होंने दो खंड किए, 9 और 8, तो 9 और 8 एक खंड किए। देखो अभी हमको, हाँ अभी हम सिंपल गणित देखते, 60/12 कितनी आती है यहाँ संख्या, तेजू बहन बोलो, 60 को 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 आएंगे। अभी हमने 12 के दो खंड कर दिए, 4 और 3, समझो हमको यहाँ से 3 को यहाँ हटाया हमने, 60/4 किया, तो क्या होता है, यहाँ जो भाजक में है 3, तो यहाँ गुणा में जाता है, यही संख्या आएगी ना, ये तो हमारा तो बिल्कुल सिंपल गणित है, नहीं समझे, ये जो भागाकार है इसका, 60 को 4 से भाग देंगे तो क्या संख्या आती है, 15 चौक 60, तो यहाँ जो नीचे गुणाकार रूप में है वो अगर ऊपर ले जाना है हमको, तो इसका जो संख्या है ना, यहाँ भागाकार है, नीचे इसका भागाकार है, 60 का भागाकार है, वो यहाँ अगर इस यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो यहाँ 5 में 3 गुणा करेंगे, समझो हमने यहाँ 3 रखा तो यहाँ 4 लेंगे हम, बराबर, वही क्या करते हैं यहाँ, अभी उन्होंने 263/72 किए थे, 263/72 तो उनकी संख्या है 3 पूर्णांक 47 और नीचे 72। अब इसमें यहाँ उन्होंने 9 रखा तो 8 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो वही वहाँ बताते हैं, तो एक आंकड़ा जिसका जहाँ लिखा है उसमें 263/9 इज इक्वल टू, हाँ अभी 47/72 आता था, अभी उसको 8 से गुणा कर दो, देखो अभी ऐसा लिखा उन्होंने, बीच में आपको प्लस साइन लिख दो, 3 प्लस ऐसा आया ना, ये बराबर है, अब इसको 8 से गुणा करना है, तो दोनों को 8 से गुणा करो, तो 8 3 24 आ गए, प्लस यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएंगे नीचे, तो 47/9 आ जाएंगे, बराबर है ना, तो 47/9 के अभी पूरे करो ना इसको, यहाँ तो 24 रखेंगे हम, प्लस 47/9 के थोड़े पूर्णांक कर दो, 47/9 9 5 45 5 और यहाँ 2/9, तो ये 24 और 5 कितने हुए, 29 29 पूर्णांक 2 नमोमोश, देखो क्या लिखा यहाँ, कहाँ पर देखो, अभी अभी यहाँ का जो मैं वही बता, उसी के ही पूर्णांक है, अभी छोटी दूसरी फिगर ले लो, छोटी कोई भी, डॉक्टर 263/72 72 त्रिक तीन दूनी सहा, तीन सात एकवीस, कितना बाकी रह गया? सहा सात तेरह चल है दोन चार, तो उसको कैसा लिखेंगे हम? तीन पूर्णांक यानी तीन पूरे और प्लस सैतालीस बाय बहत्तर, इतनी संख्या आ गई। अभी जैसे हमने ये बहत्तर के हमने दो खंड कर दिए, नौ और आठ, तो नौ को तो रखा हारांतर यानी अन्य हार, अन्य हार के रूप में लेना उसे, अन्य हारांतर यानी अन्य हार। दूसरा जो हार है, दूसरा जो यहाँ हार है वो यहाँ गुणों के रूप में चला जाएगा। तो ये तीन प्लस 47/72 है, तो तीन को भी आठ से गुणा करना, 24 आया, और 47/72 को भी आठ से गुणा करना, तो आठ नवे बहत्तर यहाँ आता है, तो 47/9 आते हैं। तो उसको फिर पूर्णांक अलग निकालो उसमें से, नवा बता पंचायस, पाँच पूरे और दो नमोश, तो पहले 24 पूरे और ये पाँच पूरे, तो 29 पूर्णांक दो नमोश आते। कौन सी प्लस? उसी को उन्होंने तीन प्लस सैतालीस बहत्तर, पूरे तीन प्लस
और अधिक बाकी के जो बाकी रह गया वो है
47/72
दूसरे लाइन में आपको 47/9 वही पूछना है ना?
तीन प्लस प्लस कैसे आए बीच में, उनको ऐसा कहना है। प्लस ही है ना? प्लस ही है वो। देखो हम पांच पूर्णांक एक तृतीयांश लेते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? पांच प्लस एक तृतीयांश है ना, वही है, ऐसा ही है ना। देखो गणित वाले जरा बोल लेना बीच में कोई अपनी भूल होती है, ये भी गणित करके बहुत साल बीत चुके ना। मैट्रिक और कॉलेज में एक साल के लिए किया था बस, उसके बाद नहीं किया। 72 को दो खंड कर दिए, हाँ हाँ। अभी देखो एट करो, हाँ बरोबर, क्या कहते हैं खबर पड़ी, 263/72 हमने बहत्तर लिए थे और यहाँ 3 + 47/72 हमारा उत्तर आता था। अभी यहाँ जो एक खंड हम वहाँ नौ ले गए, आठ ले गए ना और नौ रखा था, उसके बदले में यहाँ आठ रखो, तो ये नौ यहाँ चला जाएगा, तो नौ यहाँ चलेगा, 9 × 27 हो गई यहाँ पर, और यहाँ नौ ये आठ यहाँ आ जाएगी, तो आठ के ये पूर्णांक कर दो इसको।
नहीं मैंने ऐसे कि 48 माइनस एक कर दो तो पूर्णांक आ जाएगा, या माइनस आएगा, तो 47 है ना, तो 47 को 48 माइनस एक लिख के 48 डिवाइड बाय 8 6 हो जाएगा, पूरा पूर्णांक आ जाएगा। तो आपको
ठीक है, नहीं इसमें से पूर्णांक ही कर दो ना, 8 × 5 = 40।
मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं 47 को 48 माइनस 1 लिख देता हूँ।
ठीक है कोई बात नहीं, वो बात हम बाद में करेंगे, अभी जो हमने रेगुलर है उसके सबको साथ में ले जाएंगे हम। देखो
48/8 आ जाएगा पूर्णांक मेरा, 48/8 पूर्णांक आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा।
वही तो अपने रेगुलर गणित से जाएंगे, सब लोग समझना चाहिए। हाँ तो 8 × 5 = 40, 5 पूर्णांक 7 अष्टमांश, हमने यहाँ नौ आया, 47 पे 72 को 9 से गुणा किया, 9 8 72, अभी 8 से 47 को भाग दिया, 8 5 40, 7 8 अष्टमांश, तो यहाँ 27 और 5 32 पूर्णांक 7 8 अष्टमांश, 32 प्लस 7 8 अष्टमांश आ गए। अभी ये जो उल्टा जो है ना हानि के रूप में हमको देखना है, वो आगे समझाते हैं अलग से। उत्तर तो वही आने वाला है। हम कंफ्यूजन नहीं करना चाहते, क्योंकि जो सबको मालूम है रूटीन उसी से चलेंगे ना। अब ये जो आप माइनस करके करने की बात है वो आगे बता रहे। देखो, 2 नंबर का आंकड़ा उन्होंने लिखा है, तो जैसे आपने 48 में एक ले लिया और बाद में उसको माइनस में रखा ना, अभी 263 डिवाइडेड बाय 72, 263 डिवाइडेड बाय 72, तो हमको तो 4 का तो 3 का भाग दिया था पूरा जाता है। यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 4 2 8 और 4 7 28, तो 4 का भाग देंगे तो माइनस कितने करने पड़ेंगे, 25 बराबर। तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखो नीचे लिखा है 263 डिवाइडेड बाय पद इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाय 72। अब इसमें से वो जो हार है 72 उसके 2 खंड किए, 9 को रखा और 8 आगे ले गए, तो 8 चौक 32। यहाँ ऐसा हम एक एक स्टेप लिखेंगे उसकी। देखो 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 72 आ गए। हमको अभी यहाँ 8 से गुणा करना है, तो 4 को भी 8 से गुणा करना और यहाँ भी 8 से गुणा करना, तो 8 चौक 32 यहाँ आ गए, माइनस 8 1 8 8 9 72, 25 डिवाइडेड बाय 9। अभी उसके पूर्णांक में लिखो, 9 2 18 48 18 7 25, 7 बाय 9 बराबर है। तो 32 में से 2 चले गए, 30 आ गए, हाँ 30 माइनस 7 9 अंश, या 29 करेंगे हम। उत्तर तो वही आने वाला है। 30 में से 7 9 अंश बात करो, पहले हमने कह लिया था 29 पूर्णांक 2 9 अंश, ऊपर लिखा है देखो, 29 प्लस 2 बाय 9, और यहाँ 30 माइनस 7 बाय 9, उत्तर वही आएगा। तो ये हानि और वृद्धि रूप से उन्होंने बताया, यानी जो भाग नहीं जाता है ना, तो आगे वाला भाग दिया और उसमें से उल्टा माइनस कर दिया उन्होंने, दोनों तरफ से समझाया। अब ये हम पूर्व लब्ध ने पहले कौन सी लब, कौन पूर्व लब्ध, पूर्ण लब्ध कहाँ पर है, पूर्व लब्ध ही आना चाहिए। पूर्व लब्ध जब हमने 72 से भाग दिया था तब जो लब्ध आया था वो पूर्व लब्ध, पूर्व लब्ध ही चाहिए। और अभी 9 से भाग देते जो आएगा वो नया लब्ध नहीं, वो नहीं है। पूर्व लब्ध ने पहला भागाकार जब हम 72 से भाग दिया था तो कितना आया था, उसमें पूर्व लब्ध में उन्होंने 2 किए, एक तो पूर्व लब्ध पूरा ही है 3 पूर्णांक वाला, तो वो भाज्य शेष कहा उसको, लब्ध तो 3 आया और भाज्य शेष इतना रह गया, ऐसा उसको पूर्व लब्ध पूर्णांक में 3 बताया, और जो अपूर्णांक है उसको भाग्य शेष कहा, भाज्य शेष। वृद्धि रूप से उन्होंने बताया और हानि रूप से बताया। वृद्धि रूप यानी जिसके फुल भागाकार जाता है, भाग जाता है, तो उसको में लेकर आगे जो बचता है उसको वृद्धि रूप ले लिया। और हानि रूप से समझाता है तो जो 3 का भाग जाता था 4 का नहीं जाता था, तो 4 का देकर वो फिगर उसमें से माइनस कर दी, तो दोनों पद्धति से उन्होंने समझाए। इसी को हम बीजगणित में समझेंगे। तो देखो ऊपर, भज्यमान राशि 9, जिसको भाग देना है वो न है, 263 के बदले यहाँ न लिया है। भाजक स है, जैसे हमने 72 लिया था तो वहां पर स, तो 72 के हम दो खंड किए थे हमने, हाँ 9 और 8, वैसे स के बदले में हम क्या ले सकते हैं, स इज इक्वल टू अ इंटू ब, अ प्लस ब नहीं लिया, अ इंटू ब लिया, 9 8 72 किया था ना, वैसे स के दो खंड हो सकते हैं अ और ब। अभी लब्ध क्या आएगा, न को स से डिवाइड करने पर क आता है, हाँ जो 3 पूर्ण फिगर थी वो क आया, और लब्ध शेष यानी कुछ बाकी रह गया, तो लब्ध शेष वृद्धि रूप है, तो यहाँ क प्लस र संख्या आ गई। तो हमने यहाँ न के बदले 263 समझो आप, उसके नीचे स के बदले 72 समझो, तो यहाँ क यानी 3 प्लस 3 प्लस कितने आए थे 47/72, उसके बदले में क प्लस र आया, तो र यानी भाज्य शेष है ना, वृद्धि रूप है, तो ये जो वृद्धि रूप है भाज्य है, तो उसको अभी कैसा समझाना है, क्योंकि उसको इसके खंड से भाग देंगे तो हमको वो आगे और उसके छोटे फिगर्स करने हैं। तो यही संख्या क्या करना भी है, स के दो टुकड़े करना है, अ और ब है, तो उसमें एक खंड यहाँ रख देना, जैसे हमने 263 यानी न, और उसके नीचे हमने स पहले था 72, उसके बदले उसका एक खंड 9 रखा था, वैसे यहाँ हम अ रखेंगे और ब को ट्रांसफर करेंगे आगे, प्लस ये जो इज इक्वल टू है ना, उसके आगे हमको संक्रमित कर देंगे, क्यों तो यहाँ भाजक है वहाँ गुणक करके जाएगा, तो न के नीचे अ इंटू ब था, तो उसके बदले में हमने अ रखा, अ इंटू ब कैसा आया मालूम है ना डॉक्टर, स को रिप्लेस करो अ इंटू ब आएगा। अब इसमें से ब को आगे लेके जाना है, अ को उधर ही रखना, तो हमारे उत्तर कैसा आएगा, ब इंटू ब्रैकेट क प्लस र, हाँ तो इस तरह से आ गए ना ये, अभी तो इसे ब इंटू क प्लस, देखो क्या कहते हैं इसका उत्तर आगे क्या है, ब इंटू क, अभी ये ऊपर का हमने मिटा देते हैं, यहाँ तक आए थे ना, अभी इसी को लिखना है, तो ब इंटू क प्लस ब इंटू र है ना वो, तो हाँ उसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, हाँ ब इंटू र, ब इंटू र है, अभी इज इक्वल टू, देखो देखो र यानी क्या था, जैसे हमने डिवाइडेड बाय 72 था, कुछ डिवाइडेड बाय 72 था, तो 72 में वो नीचे वो अ आया था, नीचे 9 से भाग देते तो 8 आया था, और 8 से किया तो 9 आए थे नीचे, बराबर है ना, यानी जो यहाँ रखा था वही उसके नीचे आया था, जैसे हमारा 47/72 र के बदले 47/72 रखते हैं, तो उसको ब से यानी किससे 8 से गुणा किया था, तो क्या आया था, यहाँ नीचे 9 आया था, तो वहाँ क्या होगा, ये ब यहाँ से जाएगा और यहाँ अ आएगा, ख्याल है तो क्या कहते, देखो ये वृद्धि रूप में लिया र बाय अ, देखो ऐसा सिंपल लेना, जैसे हमारा ओरिजिनल में यहाँ 72 था, यहाँ 72 था, तो ये 72 मिटा के हमने यहाँ 9 रखा, नवे ने अ रखा, तो यहाँ पर भी जाके इसका भी गुणक ब हो जाएगा और इसका भी ब होगा, तो ब मिटकर नीचे अ रहेगा। अभी यहाँ ब है और आपको गणित से ही निकालना है ब की वैल्यू कितनी है। आठ है, बहत्तर बाय बहत्तर बाय नौ है ना, एंड ओवर डिवाइडेड बाय ब की वैल्यू निकालनी है, ओवर डिवाइडेड बाय ब, ओवर डिवाइडेड बाय अब डिवाइडेड बाय ब वैल्यू है ना आठ की। देखो बहत्तर इज इक्वल टू नौ गुणा आठ, आठ की वैल्यू कितनी है बहत्तर बाय डिवाइडेड बाय नौ। अभी यहाँ लिखो हम ओब इज इक्वल टू अ इंटू ब, हाँ तो यहाँ ब इज इक्वल टू अब डिवाइडेड बाय ओ, अब डिवाइडेड बाय ओ बराबर, हाँ अब डिवाइडेड बाय ओ, क्योंकि ये यहाँ अ आएगा ना तो अब इज इक्वल टू अब हो जाएगा। हाँ अभी हमारी यहाँ संख्या ब इंटू र है, तो ब की वैल्यू कितनी है अब डिवाइडेड बाय ओ, अब डिवाइडेड बाय बराबर है, तो यहाँ अब डिवाइड ब की वैल्यू नीचे वो छेद यहाँ नहीं आ रहा है ना, वो इसलिए वो यहाँ वो फिटअप नहीं होगा। ये र में नीचे नीचे अ इंटू ब वाला जो पहले था वो ब इंटू ब चला जाएगा, जैसे हमारे यहाँ छेद में था ना बहत्तर था, छेद में बहत्तर था और आठ से गुणा किया तो नीचे नौ आया, वैसे र के छेद में अब है ऐसा समझ लो, कोई फिगर ऐसी है कि उसमें छेद में ये है, तो वो निकल के यहाँ नीचे अ रह जाएगा, र के नीचे अ रह जाएगा। यानी शेष में जो उन्होंने अकेला र लिखा है ना, वो र बाय स या र बाय अब लिखते तो हमारे अधिक ख्याल में आता, उन्होंने फुल फिगर लिखी है इसलिए वो ख्याल में आने से बराबर तकलीफ हो रही है। क्यों महेंद्र भाई, र को अपूर्णांक में लिखना था तो र बाय स लिखते तो पता चलता ना, स यानी अ इंटू ब, तो र डिवाइडेड बाय अ इंटू ब था और उसको ब से मल्टीप्लाई किया तो ब ब चला गया, र बाय अ रह गया, तो र के बदले र बाय अ ब लिखते तो वो बराबर ख्याल में आ जाता, यानी वो कैसा निकला वो खबर पड़ जाती। देखो इसको फिर पढ़ेंगे बीजगणित पहले से, हाँ भज्यमान राशि न है, भाजक स है, स के हम दो खंड कर सकते हैं ओ इंटू ब, तो हमने न को स से डिवाइड करने पर लब्ध पूर्णांक में अभी वृद्धि रूप लब्ध का अर्थ क्या होता है और हानि रूप लब्ध का क्या अर्थ होता है, जो हमने पहले 67 पर घटाया था, 67 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण फिगर इसकी 5 आती है और 7 बैलेंस रहता है, 7 12 अंश बाहर रहता है, तो ये वृद्धि रूप लब्ध है, 3 प्लस कुछ वृद्धि रहती है वहाँ, 5 प्लस 7 12 अंश है, ये वृद्धि रूप लब्ध है। अब हानि रूप लब्ध लिखना था तो हम क्या कहेंगे, बरसक 72 सहा माइनस, अभी 72 ऊपर लेना, सात और कितने 72 होते हैं 5, तो 6 माइनस 5 12 अंश, ये हानि रूप लब्ध आया। तो वृद्धि रूप और हानि रूप दो तरह से उन्होंने समझाया। तो वृद्धि रूप और हानि रूप में क्या हो जाता है, अभी ये जो स है उसके दो हिस्से करेंगे हम, 4 × 3, तो 4 को इधर ही रखेंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 मल्टीप्लाई 5 को भी कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई 5 को करते हैं तो 15 हो जाएगी, और 7 12 अंश को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 रहेंगे, ख्याल है ना, तो ये उसमें ऐड कर देना, ख्याल है। हाँ, यानी वो हानि रूप में भी ऐसा होगा, हानि रूप में क्या करना है, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 हो जाएगी, 21 माइनस में 5 12 अंश है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 रह जाएंगे। तो ये हानि रूप और वृद्धि रूप में उसको क्या करना है उसको समझाया। हानि वृद्धि रूप इसका अर्थ क्या होता है, हम फुल फिगर का भाग देते हैं तो आगे वाली देकर माइनस में लेना, हम फुल देके उसका जो शेष है वो प्लस में रखते हैं, उसमें सबस्ट्रैक्ट माइनस करना है, ये वृद्धि रूप और हानि रूप। तो ये इस प्रकार से हमारा ये, अब यहाँ जो है ना, ये मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, पहले में पहले उन्होंने डेटा ऊपर लिख दिया, लब्ध इतना है शेष इतना है, तो लब्ध में क प्लस 1 दूसरा पॉइंट, दूसरे में यानी वो हानि रूप समझा रहे, हानि रूप लब्ध में क्या लेना, आगे वाला लेना, जैसे हमने 12 × 5 = 60 लिया था, 5 लिया था ना पूर्णांक में, और आगे वृद्धि रूप लब्ध था, हानि रूप लब्ध में क्या ना 5 + 1 करना, 6 लेना और उसमें से जो माइनस हानि रूप लब्ध है, वैसे यहाँ क प्लस 1 रखा, 2 यानी वो हानि रूप लब्ध बता रहे, तो उसमें क प्लस 1 लब्ध में लिया और फिर वो शेष क्या होगा, र 1 होगा, पहले तो शेष र आता था, अभी शेष र 1 आया, तो उसमें न इज इक्वल टू अ इंटू ब क प्लस र। देखो अपना 67 इज इक्वल टू, इसमें फिगर अभी अपने फिर कर दो, 4 × 3 और इंटू बाय ना, अभी हमारा कितना शेष आया था, 5 + 7/12 अंश, यही है ना, 67 इज इक्वल टू चात्रिक 12 गुना ये शेष, यही इन्होंने यहाँ लिखा है, न इज इक्वल टू अ इंटू ब इंटू क प्लस र, ये वृद्धि रूप कैसा रहता है उसको लिखा है। अब हानि रूप में लिखना है तो इसी को कैसे लिखेंगे हम, 4 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 − 5/12, ये हानि रूप इक्वेशन उन्होंने लिख दिया। क प्लस 1 लिखा नहीं, यहाँ देखो सेकंड नंबर और ऐसे दो करके, न इज इक्वल टू ओ इंटू ब इंटू ब्रैकेट क प्लस 1 और माइनस र, ये पूरे को ही और एक ब्रैकेट होना चाहिए, क प्लस र ऊपर है ना, उसको भी एक ब्रैकेट कर दो, अच्छा रहने दो, ठीक है, उन्होंने र में वो इंक्लूड कर दिया उनका सब। अभी ये तो यहाँ तो स्टेटमेंट हुआ, अभी जो बता रहे हैं, न डिवाइडेड बाय अ रह गया, न डिवाइडेड बाय अ इंटू ब था पहले, न डिवाइडेड बाय स था ना, अपने ओरिजिनल डेटा क्या है ऊपर, न डिवाइडेड बाय स इज इक्वल टू क प्लस र। अभी स में के दो खंड किए उन्होंने, अ और ब ऐसे दो खंड किए, तो अ को रखा तो ब आगे मल्टीप्लिकेशन में चला गया। जैसे ऊपर हमने न इज इक्वल टू अ इंटू ब किया था, उसमें से अ निकाल दिया तो ब उसको वहीं पर रखा, तो ब इंटू क प्लस र डिवाइडेड बाय अ, ये वृद्धि रूप। और नीचे जो है न डिवाइडेड बाय अ इज इक्वल टू ब इंटू ब्रैकेट क प्लस वन, वहाँ माइनस साइन इनकार लिखने का रह गया है, माइनस र बाय अ चाहिए, र वन प्लस दो नंबर है, मैं फिर से पढ़ती हूँ, हाँ खाल नीचे का दो नंबर, दो से न बाय अ इज इक्वल टू ब इंटू ब्रैकेट क प्लस वन, अभी यहाँ माइनस साइन ला लो, माइनस र वन बाय अ ऐसा चाहिए, मिला कि नहीं मिला? क प्लस वन का ब्रैकेट पूरा होता है ना, ब्रैकेट पूरा होता ही माइनस साइन डालना, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन डालना।
पहले ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा ना, वो हानि रूप है।
जैसे नीचे का अंकगणित देखो आप, नीचे के अंकगणित के लाइट लास्ट लाइन 263 बाय 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, यहाँ माइनस लिखा है, वैसा ऊपर भी माइनस क प्लस वन के बाद माइनस साइन चाहिए था, वो यहाँ रहने का लिखने का रह गया, बराबर है ना। अब हम आगे का सूत्र देखेंगे, पहले सूत्र पढ़ेंगे, अवनयन राशि गुण दो अवनयेन नूनयेन लथेन भजिदो भागहारो पखे ओ हो दी अवहारे। क्या कहते, भागहार को अपनयन राशि से गुणा कर देने पर और अपनयन राशि को लब्ध राशि में से घटाकर जो शेष रहे उसका भाग देने पर जो लब्ध आता है वह भागहार में प्रक्षेप राशि होती है। कितना समझ में आया? नहीं आया यही इतना तो समझ में आया। अब देखेंगे अपन नयन राशि किसे कहना वो देखेंगे। देखो पहले बीजगणित यहाँ लिखा है ना, उसको देखते जरा, अंकगणित देखना है, अच्छा अंकगणित विल हेल्प यू, ठीक है। हमको हमारी भज्यमान राशि यहाँ 36 है और उसको भाजक यानी भागहार जो है वो 4 है, तो 36 को डिवाइडेड बाय 4 अपना उत्तर कितना आया? 9 आया, पर हमें इष्ट है 6, हमें 6 चाहिए, हमारा उत्तर 6 आना चाहिए, तो यहाँ उत्तर 6 आना चाहिए यानी हमारी फाइनल आंसर कम आनी चाहिए, है ना, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, यहाँ लब्ध में से हमको घटा कर आना चाहिए कुछ, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड 6 है, तो यहाँ हमारे 3 कम आने चाहिए, तो 3 कम आना चाहिए तो नेचुरली भाजक को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो फाइनल आंसर कम आएगा। जैसे 36 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उत्तर 9 आता है, 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो उत्तर 9 आता है, परंतु हमें उत्तर 6 चाहिए, इसमें से 3 कम चाहिए, 3 कम करना चाहिए, तो ये हमारी अपनयन राशि 3 है, जो कम आनी चाहिए, तो ये अपनयन राशि को क्या करना है, भागहार को गुणा कर देना, ये जो 4 है वो 4 को 3 से गुणा करना, पहले खाली 3 से गुणा करने से काम नहीं चलेगा, 3 से गुणा करेंगे तो 12 त्रिक 36 3 आएंगे, तो ये उल्टा का सुल्टा हो जाएगा, तो पहले अपनयन राशि से गुणा कर दो, और क्या करना, और अपनयन राशि को लब्ध राशि में से घटाकर जो शेष रहे, यानी जो अपना इष्ट है, वो अपना इष्ट कौन है? छे। तो वो छे को, हाँ, छे से डिवाइड करना, कितने आए? दो आ गए, दो। तो अभी ये जो अपना भागार है उसमें दो को प्रक्षिप्त करना, यानी प्रक्षेप, उसका भागार का प्रक्षेप यानी ऐड, अपन यानी डिवाइड माइनस और प्रक्षेप यानी। तो ये जो यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 6 दो आ गई संख्या, डॉक्टर ये बराबर है ना? हमें इसमें तीन कम चाहिए, ये हमारी अपनयन राशि तीन है। तो ये तीन से यहाँ का जो भाजक है 4 उसको गुणा कर दो। ये पहले ओरिजिनल भाजक तो रखो, हमको प्रक्षेपक राशि निकालनी है। प्रक्षेप राशि है ना, उसमें हम और कितना ऐड करें उसको निकालना है। 4 प्लस कुछ ऐड करना है, तो क्या ऐड करेंगे? तो 4 को 3 से गुणा करो, अपनयन राशि से गुणा करो, और डिवाइडेड बाय जो इष्ट राशि है यानी अपनयन राशि को इसमें से माइनस करो। यही जो हमारी इष्ट राशि है, अपनयन राशि हमने कैसे निकाली थी? ये दोनों के, हाँ, तो हमारा जो नया लब्ध हम चाहिए है, ये अपनयन राशि को उसमें से माइनस करो, 3 को माइनस करो 9 से, तो 6 आ जाएगा। तो 4 × 3 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारी संख्या 2 आती है। तो 2 को ओरिजिनल भाजक में यहाँ मिला दो, तो यहाँ 4 × 2 = 6 हो जाएंगे। तो इष्ट राशि हमें चाहिए वो आ जाएगी, क्या नहीं? तो देखो आप अपनी यहाँ यहाँ जो लिखा है ना नीचे के बीजगणित में, ये प्रक्षेप लिखा है, परंतु अभी भागार प्रक्षेप मिलाने के बाद जो भागार होगा, ये 2 तो प्रक्षेप हुआ, अभी नया भागार कितना होगा? 4 + 2 ऐसा होना चाहिए नया भागार, प्रक्षेप भागार बढ़ेगा। देखो यहाँ जो बीजगणित में उन्होंने दिया है ना, वहाँ क्या लिखते हैं, अभी इसी को हम वहाँ डालेंगे। ओ डिवाइडेड बाय बो इज इक्वल टू क, परंतु हमें क नहीं चाहिए, हमें ख चाहिए। तो अपना अपनयन क माइनस ख है, ये अपनयन राशि है, उसको क्या करने पड़ेगा? ब प्लस, ब को रखो ना, इसमें प्रक्षेप कितना करना है, तो ब प्लस ब इंटू, 4 × 3 गुना किया था, ब प्लस ब इंटू क माइनस ख डिवाइडेड बाय, हमको इष्ट राशि ख है, डिवाइडेड बाय ख, ऐसा है ना अभी नया प्रक्षेप। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, ब क इंटू ब ख, हाँ ब क डिवाइडेड बाय ख आ जाता है। ब भी है ना यहाँ पर, देखो इसको सॉल्व करना है हमको, ब प्लस ब इंटू ब्रैकेट ब क माइनस क, अभी इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, ब क माइनस ब ख आएंगे, ब क माइनस ब ख, अब यहाँ तो छेद में कुछ नहीं है, तो समच्छेद करना है, तो इसके नीचे भी ख आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी ख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ब ख आ जाएगा, ब ख प्लस ब क माइनस ब ख प्लस बख माइनस बख चले जाएंगे। विनोद भाई ये स्टेप समझ में आएगी? देखो बिल्कुल आसान है, नहीं, देखो ये बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया, ब इंटू ब्रैकेट क माइनस ख था, तो ब इंटू ब्रैकेट क माइनस ख का क्या होगा, ब क माइनस बख, परंतु ये जो इसके नीचे छेद नहीं था, ब प्लस सब किया था, तो इसके नीचे भी ख छेद चाहिए, तभी तो इसकी टोटल हम डायरेक्ट करेंगे। तो इसके नीचे ख अगर छेद लाना है तो ये ब को भी ख से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ब ख प्लस ब ख माइनस ब ख, तो ब ख प्लस और ये ब ख माइनस, ये चले जाएगी, अकेला ब ख रह गया और नीचे तो ख है ही है, यही यहाँ लिखा है। तो प्रक्षेप अव्यवहार जो लिखा है ब प्लस करके लिखा था, और अंकगणित में जो लिखा है वो डायरेक्ट दो इतना ही आया है, यानी बीजगणित और अंकगणित में इनमें ही लिखने में डिफरेंस रह गया है। तो चार प्लस दो लिखना है उसी मेथड से लिखना है, तो ख्याल में है ना, इसलिए मैंने बोला वो अंकगणित मत देखो। यहाँ अंकगणित और यानी कितना ऐड किया है तो दो ऐड किया, वैसे उन्होंने ब क बाय ख प्रक्षेप अव्यवहार लिखा है, अकेला दो लिखना था तो ब इंटू ब्रैकेट क माइनस ख डिवाइडेड बाय ख इतना लिख देते, परंतु उन्होंने पूरा ही लिखा है, उसका अर्थ नीचे भी क्या लिखना चाहिए था, चार लिखना, चार प्लस दो लिखना था। हाँ वहाँ लिख देना,
मतलब ये अगला स्टेप उसके सामने लिख दे,
हाँ उसमें ऐसा लिख, प्रक्षेप भागार वही है, अवहार कहो या भागार कहो की बात, प्रक्षेप किया वो, हाँ ऐड किया, दोनों को वही समझाना चाहते हैं, अलग अलग नहीं है। अगर आप माइनस के बारे में समझा रहे तो अगला अंकगणित देखो, आप अपने ये भागार लिखा है, अपने ये भागार में फोर माइनस कर दिया है, वो अभी हमने देखा नहीं है, परंतु वो फोर माइनस करके फाइनल रिजल्ट लिखा है। एक तो प्रक्षेप भागार यानी बढ़ा हुआ भागार, और अपने भागार यानी घटा हुआ भागार। तो यहाँ चार में दो ऐड करके लिखना चाहिए था, यानी चार प्लस दो ऐसा लिखना है यहाँ भी, अवहार कहो भागार कहो एक ही बात है। बीजगणित और अंकगणित में सिमिलैरिटी चाहिए थी, आगे के सूत्र में जो अंकगणित बीजगणित है उसमें तो सिमिलैरिटी है और यहाँ नहीं है, तो यहाँ वो रह गई है। पेज नंबर 48 पर अंकगणित से जो लिखा है उसमें से जो दूसरी लाइन है, चार इंटू छः बाय चार इंटू थ्री बाय छः इज इक्वल टू दो, वो प्रक्षेप है अकेला, पर प्रक्षेप भागहार कितना होगा, नया भागहार कितना हो जाएगा, हाँ तो ओरिजिनल चार प्लस ये जो नया टू, यानी बीच में एक ऐसी स्टेप लिख सकते हैं, चार प्लस चार गुना तीन डिवाइडेड बाय छः, चार प्लस जैसे ब प्लस किया ना हमने, वैसे चार प्लस चार गुना तीन डिवाइडेड बाय छः, जो वहाँ है वही, उसी में चार प्लस करना है, यानी ऐसा लिख दो चार प्लस चार गुना तीन बाय छः, ये हमारा नया भागहार आया। एक स्टेप और आगे लिख देना वहाँ, तो फाइनल प्रक्षेप भागहार अपना आएगा, यानी हमको जो लब्ध है उसमें छोटी छोटा लब्ध चाहिए, 36 डिवाइडेड बाय 4 9 आते थे, उसके बदले में हमें 6 चाहिए, तो लब्ध हमें कम चाहिए, तो लब्ध में से कुछ घटाना है, तो कितना घटाना है, तो 3 घटाना है, तो 3 हमारी अपनयन राशि हुई। अभी बताए ना, यहाँ लिखा है देखो, कितना है इसका आंसर, इसका आंसर कितना आया, इसका अंतर कितना आया, ये जो लिखा है इसका आंसर कितना है, हाँ 4 + 12 / 6 करो, आप कागज है आपके पास, आप सॉल्व करना, इस पर पार्टी पर करना।
ये देखो इधर
12 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? तो कितना आया? 6 आया। तो 6 ही आंसर है इसका। तो हमारे हमें नया कौन सा चाहिए था आंसर? 6 चाहिए था। पहले 9 था, हमें 6 चाहिए। तो 4 भाजक था, उसके बदले में अभी भाजक कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, बराबर है ना? तो अपनयन राशि यानी हमको लब्ध रूप में कम चाहिए, बड़ा हमको लब्ध नहीं चाहिए, तो जितने से कम है वो अपनयन राशि। तो हमको भाजक बड़ा करना पड़ेगा, तो भाजक में कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करना है? तो ओरिजिनल भाजक प्लस भाजक इनटू ओरिजिनल रखना, 4 + 4 × 3/6, 6 यानी अपनी इष्ट राशि, इष्ट राशि कहो या अपनयन राशि को ओरिजिनल लब्ध में से घटा कहो, एक ही बात है ना? हाँ? देखो देखो, पहला ही सब में हानि रूप में अभी गई नहीं मैं। हमें लब्ध छोटा चाहिए, पहले बड़ा था, अभी कोई भी दूसरी फिगर ले लो, उसमें हम वो समझेंगे। कौन सा चाहिए? 60 ले लो और नीचे 12 नहीं, छोटी छोटी जरा फिगर ले लो। हाँ नहीं नहीं, 6 ले लो ना, तो 10 है। 60 / 6 = 10, और हमें 10 नहीं चाहिए। 8 चाहिए आपको? हाँ कम चाहिए, अब कम चाहिए, 5 चाहिए ना आपको? 5 चाहिए, इष्ट हमारा 5 है। अपनयन राशि कितनी होगी? 5, अपनयन राशि 5। तो अभी हमारा 6 जो भाजक है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अपनयन राशि देखिए ये 5, अभी हमको इष्ट राशि 5 और अपनयन राशि 5। जितना कम, क्योंकि इसमें से हमको उतना घटाना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पर 5 लाते हैं तो यह भाजक में क्या करना पड़ेगा? 6 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 6 में कितना ऐड करना? तो 6 को ही अपनयन राशि से गुणा करेंगे और अभी हमारी जो इष्ट राशि है उससे ये मल्टीप्लायर और इसके डिवाइड करेंगे, तो ये 5-5 चले गए, तो 12। तो 12, 60 को 12 से डिवाइड करते हैं 5। आपको वही चाहिए था ना? ख्याल है? हाँ हाँ, लिखना लिखना भाई, ये तो मैंने अभी उदाहरण बना दिए, मेरे पास भी कुछ नहीं लिखा हुआ। ऐसे अलग अलग स्वयं ही उदाहरण लेके हमको संदृष्टि करके। कौन से सभी के? एक एक तो एप्लीकेशन समझना, जैसे हम कभी गुणाकार करते, भागाकार करते, वजा बाकी भेरी, तो पहले क्लास का बच्चा तो कंफ्यूज होता है ना, अरे ये सब एप्लीकेशन एक साथ हो गया तो क्या होगा, अरे अभी की चिंता करो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ये कितने आसान इक्वेशन हो गए, बड़ी बड़ी संख्या के भी आप कर सकते हैं। हाँ भाजक प्लस भाजक इष्ट राशि नहीं, भाजक इनटू अपनयन राशि, भाजक इनटू अपनयन राशि डिवाइडेड बाय इष्ट राशि। बारह नया भागाहार हुआ,
तो
अभी हम उल्टा देखते हैं, हमको तो अभी 10 से तो हमने 12 ही देखा था, 5 चाहिए था हमको, अभी आपको कितना चाहिए? 12 चाहिए, 12 चाहिए हमारे इष्ट। यानी अभी हम लब्ध में कुछ ऐड करना है, यानी लब्ध में प्रक्षेप करना है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना, तो ये अपनयन यहाँ से करना पड़ेगा, भाजक में से कुछ घटाना पड़ेगा। अब ये पहले सूत्र पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे और फिर इस पर घटाएंगे। ये 30 नंबर का है, ऊपर 30 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, इसी 49 पेज पर। पखे वरासी गुणिदो पखे वेणा ही एण लथेण भजियो हु भाग हारो अवणिचो होई अवहारे। भागहार को प्रक्षेप राशि से गुणा कर देने पर, ये प्रक्षेप वहाँ अपनयन राशि ने नया लब्ध हमको चाहिए था, वो लाने के लिए जो राशि वहाँ से माइनस करनी थी उसको अपनयन राशि की। अब प्रक्षेप राशि ने अभी हमारा 60 डिवाइडेड बाय 6 ने हमने पहले कौन सा लिया था? 6 ही लिया है ना, हाँ, इज इक्वल टू 10, ये हमारी राशि है, परंतु हमें नया 12 चाहिए, तो प्रक्षेप राशि 2 हुई हमारी, लब्ध में 2 ऐड हो गए हैं। तो क्या कहते हैं, भागहार को अभी भागहार में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो भागहार को यानी 6 को तो रखना और कुछ इसमें से घटाना है, तो क्या घटाना? तो 6 को प्रक्षेप राशि से गुणा कर देना इंटू 2 और फिर और प्रक्षेप से अधिक लब्ध राशि का भाग देने पर, यानी अपना इष्ट राशि का भाग देने पर, इष्ट राशि कितनी अपनी है? 12, उसका भाग देने पर जो राशि आती है, जो लब्ध आता है, वह भागहार में अपनेय राशि होती है। भागहार में से उसने घटानी पड़ेगी, अपनेय, जिसको घटाया जाता है वो अपनेय राशि। पहले हमने भागहार में प्रक्षेप किया था क्योंकि इष्ट हमको छोटा चाहिए था, इष्ट छोटा था तो वो अपने ये किया था हमने वहां से। अब हमको इष्ट बड़ा चाहिए, यानी हमने लब्ध में ही ऐड कर दिया, लब्ध में प्रक्षेप हुआ है, वो लब्ध में प्रक्षेप हुआ है, तो भागहार में से अपने ये करना पड़ेगा। पहले लब्ध में से अपने ये किया था तो भागहार में प्रक्षिप्त किया था, ख्याल आता है? लब्ध जब हम छोटा चाहिए था तो हमने भागहार में प्रक्षेप किया था, ऐड किया था। अभी हमको लब्ध में छोटा चाहिए, सॉरी, अभी लब्ध में हमको बड़ा चाहिए, 10 के बदले हमको 12 चाहिए, तो 2 प्रक्षेप हुए यहाँ, लब्ध में 2 प्रक्षेप राशि हुई, तो अभी वो भागहार में से वो अपने ये करना पड़ेगा। हाँ, तो ओरिजिनल भागहार माइनस ओरिजिनल भागहार गुना वो ऊपर जो प्रक्षेप राशि थी वो यहाँ लिखना, वो और डिवाइडेड बाय इष्ट राशि 12 चाहिए, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 12 1 आता है, तो 6 में से 1 माइनस कर दो, 5 आएगा, तो हमारा नया लब्ध 12 मिल जाएगा। क्या लगा? ये 2000 साल पहले ये गणित यहाँ चलते थे, हाँ, और अभी हमको 1+1 2 वो तो क्या चाहिए, वो कैलकुलेटर चाहिए। देखो देखो, इसको हम बीजगणित, अभी ये आसान हुआ ना, अंकगणित देखते फिर बीजगणित देखेंगे। प्राकृत में लिखा है हुआ ना, हाँ, 10 में 2 ऐड किया तो 2 हमारी प्रक्षेप राशि हुई, प्रक्षेप यानी हम पहले 9 में से हमको 6 चाहिए था, तो 3 हमारी अपनयन राशि थी, क्योंकि लब्ध हमको छोटा चाहिए था, अपना इष्ट कम था, यहाँ इष्ट बड़ा है, तो इष्ट बड़ा लेने के लिए हमको लब्ध में कुछ प्रक्षेप करना पड़ा, तो प्रक्षेप यानी उसमें एडिशन थी, तो लब्ध में एडिशन है तो भाजक में से कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगाना है, ख्याल है ना? हमको लब्ध बड़ा चाहिए तो छोटे से भाग देना पड़े, वही है ना। हाँ, तो इसलिए अभी हम देखते हैं इसको अंक गणित से देखेंगे। हाँ, समझाया नहीं है। हाँ, क्योंकि मूल गाथा ही बहुत आसान है। देखो देखो, 36 / 4 आता है 9, परंतु अपना इको इष्ट है 12, तो 9 में कितना ऐड करना पड़ता है, तो 3, तो अपना प्रक्षेप हुआ 3, तो प्रक्षेप हुआ 3, लब्ध में प्रक्षेप हुआ है, तो भागहार में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो अपने ही भागहार यानी घटाया हुआ भागहार कितना होगा, 4 माइनस, तो ये 4 को ही 3 से गुणा करना और डिवाइडेड बाय इष्ट राशि जो 12 है, तो 12 / 12 ने 1 यानी 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, ये अपने ये भागहार। वैसे वहाँ वो प्रक्षेप भागहार लिखा था ना, उसमें भी वो ओरिजिनल 4 में वो ऐड करना रह गया था, उनका सिमिलैरिटी चाहिए थी दोनों जगह, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ वो कुछ ऐड कर दो, ख्याल है। अब यही बीज गणित से देखते हैं, अ डिवाइडेड बाय ब, हाँ तो कितने आएंगे, हाँ वही निकालने के लिए भागहार में क्या करना है वो बताया, भागहार नया कौन सा लाना है। आगे तो हमारी इष्ट 12 है, मूल संख्या 36 है, तो भागहार कितना चाहिए, हमने भागहार का उत्तर पूछा है, वो भागहार से फिर भाजित करके वो 12 निकालना, वो अपना उदाहरण में नहीं है, उदाहरण हमारा एग्जाम्पल यही सॉल्व होता है, पूर्ण होता है कि नया भागहार कौन सा है वो हमने निकाला। भागहार निकालते तो इष्ट राशि उतनी आनी ही है, आती है कि नहीं वो आप करके देखो, जैसे हम सॉल्व करके देखते ना अपना उत्तर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, तो ये नया भागहार से भाग करके देखो 12 आता है तो हमारा उत्तर बराबर है, पर उत्तर हमने भागहार पूछा था तो उत्तर में भागहार को ही लिखना पड़ेगा, फिर 36 / 3 करके 12 वो उत्तर नहीं है आपका, वो तो नया लब्ध है, वो तो इष्ट है, ख्याल है ना। हाँ, देखो हम बीज गणित देखते हैं, 2 मिनट है और, अ / ब इज इक्वल टू क, परंतु हमारा इष्ट ख है, परंतु हमारा ख अभी बड़ा है, पहले हमारा ख छोटा था, हमने क में से ख माइनस किया था, क में से ख माइनस करके हमने उसको अपनी राशि की थी कही थी, अब ख बड़ा है तो ख में से क माइनस किया, वो हमारी प्रक्षिप्त राशि, प्रक्षिप्त यानी ऐड की हुई राशि, मिलाई हुई राशि, ये इसके अर्थ ख्याल में आती है ना, तो घोटाला नहीं होता है। मिलाई हुई राशि, वो कल क्रिकेट चल रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और हमारा ये चल रहा था मेरा। उसके अर्थ लगने चाहिए ना, उपनयन राशि क्या है, प्रक्षिप्त राशि क्या है, देख क्या मैं बता रही हूँ, प्रक्षिप्त राशि का अर्थ मिलाई हुई राशि, तो ख माइनस क हो गया। अब अपने ये भागहार जो निकालना है तो ब में से कुछ घटाना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि बड़ा चाहिए, इष्ट हमारा बड़ा है, तो ब में से क्या, सुनो पहले, ब में से क्या घटाना है, ब माइनस ब मल्टीप्लाइड बाय क माइनस ख, यानी हमारे जो ओरिजिनल भागहार है उसको हमने प्रक्षिप्त से गुणा कर दिया। हाँ, ख माइनस क, ख माइनस ही क चाहिए, बराबर है, और डिवाइडेड बाय ख, उसको सॉल्व करेंगे पहले मेथड से तो वो ब क बाय ख हो जाता है। हाँ, नहीं उल्टा है, ख माइनस क, अपनी प्रक्षिप्त राशि ख माइनस क है, वो पहले जो लिखा है ना वो क माइनस ख निकाल के ख माइनस कर देना दूसरे स्टेप में। चलो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो।